ते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 6 और अध्याय 1। अध्याय का नाम है अजामिल के जीवन का इतिहास और श्लोक संख्या 65। मेरे पीछे बोले विप्राम स्वभार्याम अप्रौढ़ाम कुले महती लंबिताम विससर्जा चिरात् पापः स्वरिण्या स्वरिण्या पांग विदधे। शब्दार्थ बोलिए विप्राम ब्राह्मण की पुत्री स्वभार्याम अपनी पत्नी को अप्रौढ़ाम अधिक आयु वाली नहीं युवती कुले परिवार से महती अतीव सम्माननीय लंबिताम विवाहिता विससर्ज त्याग दिया अचिरात तुरंत ही पापः पापी होने से स्वैरिण्या वेश्या की अपांग विद्ध धीहि कामयुक्त चितवन से विधि हुई उसकी बुद्धि। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए चूंकि उसकी बुद्धि वेश्या की काम पूर्ण चितवन से बिंध चुकी थी अतः शिकार हुआ ब्राह्मण अजामिल उसकी संगति में पाप कर्म करने लगा। उसने अपनी अति सुंदर तरुण पत्नी तक का साथ छोड़ दिया जो अति सम्मानित ब्राह्मण कुल से आई थी। तो तात्पर्य पढ़ने से पहले समझेंगे इस श्लोक में श्रील सुखदेव गोस्वामी क्या कह रहे हैं। अजामिल की कथा चल रही है और अजामिल ने वेश्या के साथ ऐसा अपना संपर्क बनाया है कि अब उसके हृदय में कोमल भावनाएं सब समाप्त हो चुकी हैं। उसका हृदय इतना दूषित हो गया है कि कठोरता उसके हृदय में बहुत कठोरता आ गई। यहाँ पर एक हृदय की कठोरता का एक नमूना बताया जा रहा है कि क्या है। उसका हृदय इतना कठोर है कि उसने अपनी पत्नी का त्याग कर दिया। और वो कैसी पत्नी है पहली बात बताएगी विप्रा। विप्रा है, विप्र पुरुष के लिए कहा जाता है, स्त्री के लिए विप्रा। तो विप्रा का मतलब है ब्राह्मणी, उसकी पत्नी ब्राह्मणी है। ब्राह्मणी का मतलब है कि शास्त्रों में जिसकी रुचि हो तो उससे विप्र कहा जाता है, और कोई स्त्री है जिसकी शास्त्रों में रुचि हो तो विप्रा। इसका मतलब है कि वो शिक्षित शिक्षित स्त्री विप्रा है। उसका त्याग कर दिया। दूसरा स्वभार्याम उसकी अपनी पत्नी, उसका त्याग किया। तीसरा अप्रौढ़ाम, अप्रौढ़ाम का मतलब है कि वो प्रौढ़ा नहीं हुई है अभी, अभी वो नवविवाहिता है। प्रौढ़ा स्त्रियां होती हैं, उनके कुछ बच्चे हो गए और आयु भी जो है कुछ ढलने लगती है तो वो प्रौढ़ कहलाती हैं। शरीर में जैसे परिवर्तन होते हैं तो जन्म वृद्धि, शरीर बड़ा होता है और बड़ा होते होते फिर बड़ा होना बंद हो जाता है, रुक जाता है ना, अस्तित्व कहते हैं। फिर प्रजनन, फिर और बच्चे पैदा होते हैं, है ना, फिर क्षय, और बाद में फिर जो है छीण होने लगता है शरीर। तो अप्रौढ़ का मतलब कि अभी वो प्रौढ़ नहीं हुई है, अभी उसकी जो शरीर है उसका वो जो है विकसित हो रहा है, अभी विकास की अवस्था में है। दूसरा शरीर में दूसरा परिवर्तन अभी चल रहा है, जन्म के बाद वृद्धि बड़ी। तो ऐसी स्थिति में पत्नी का त्याग करना बहुत बड़ा दोष है, है? और फिर कुले महति लंबिताम, महान कुल में सम्मानित परिवार में वो जो पैदा हुई है, विसर्ज चरात अचरात, अचरात माने बहुत जल्दी त्याग दिया, तुरंत ही त्याग दिया, बिना कोई निर्णय लिए या बिना किसी विचार के उसने त्याग दिया। विसर्ज अचरात, अचरात माने देर नहीं लगाई उसने, सोचने में भी देर नहीं लगाई कि मैं किसका त्याग कर रहा हूँ, कैसी पत्नी का त्याग कर रहा हूँ, क्योंकि पत्नी के प्रति अपनी कोई जिम्मेदारी होती है। अगर पत्नी पूर्ण समर्पित है और पूर्ण पवित्र है, पतिव्रता है, पवित्र उसका आचरण है, तो पति की फिर बहुत जिम्मेदारी होती है कि वो पत्नी की देखभाल करे, सुरक्षा करे। तो त्याग दिया, और क्यों त्याग दिया, क्या कोई ऊंचा उद्देश्य था कि उसको जो है भगवान की शरण लेनी है, किसने त्याग दिया, स्वैरिण्य अपांग विदिधि, उसकी जो बुद्धि है वो स्वैरिणी एक वेश्या है, उसके कामयुक्त चितवन से उसकी बुद्धि बिंध गई, विध का मतलब है आर पार हो गई, जैसे बाण से शरीर विध हो जाता है, तो व्यक्ति छटपटाता है या फिर वो भाग नहीं सकता, बंध जाता है, तो वो जो है विवश हो जाता है, तो बाण आर पार हो जाए तो विध कहते हैं कि शरीर से विध, उसकी बुद्धि में जो है उसके जो वेश्या स्वर्णी स्त्री है, तो उसकी कामयुक्त चितवन से उसका जो है जो बुद्धि है वो उसकी बिंध गई है, है ना। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं, श्रील प्रभुपाद की जय। प्रथा के अनुसार हर व्यक्ति अपने पिता का उत्तराधिकार पाने का पात्र है, और अजामिल ने भी अपने पिता का धन उत्तराधिकार में पाया, किंतु उसने इस धन से क्या किया, उसने ये धन कृष्ण की सेवा में ना लगाकर वेश्या की सेवा में लगा दिया। ये सब जो है पिछले श्लोक की बात है, प्रभुपाद आज इस श्लोक के तात्पर्य में जो बात लिख रहे हैं वो पिछले श्लोक की बात है, कि जो पिता का धन है उसने इसकी सेवा में लगाया ना। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, अतः उसकी निंदा हुई और वो यमराज के द्वारा दंड नहीं हुआ, ये सब कैसे हुआ, वो एक वेश्या की घातक कामयुक्त चितवन का शिकार हो गया। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। तो जो प्रभुपाद अंतिम वाक्य में जो कह रहे हैं वो क्या कह रहे हैं, एक वेश्या की घातक कामयुक्त चितवन का शिकार हो गया, और इस श्लोक में जो शब्द है वो क्या है, अपांग विदधि चितवन, जैसे कहते हैं दृष्टि के बाण से जो है कोई व्यक्ति घायल हो जाए, तो ये भी एक बाण है, जैसे कहते हैं काम बाण, है ना। तो रजोगुण और तमोगुण के भाव को भी जो है भागवत में बताया गया है कि ये भी जो है क्या है, एक बाण की तरह है। तदा रजस्तमो भावा काम लोभादयस्य चेत एत अनाविद्धम स्थितम सत्वे प्रसीदति, कि अगर कोई व्यक्ति भक्ति की साधना में लग जाता है, नष्ट प्राय स्वभद्रेशु नित्यम भागवत सेवया, नित्यम अगर भागवत सेवा की जाए, नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नष्ट की, तो भगवान के प्रति उसकी भक्ति नष्ट की हो जाती, और जब भक्ति की निष्ठा प्राप्त हो जाती है तदा रजस्तमो भावा काम लोभा आदिश्ये, तो समय रजोगुण और तमोगुण के जो भाव है काम लोभ आदि, चित एत अनाविधम, चित्त जो है उसका इन काम भाव से और लोभ के भाव से चित्त एत अनाविधम विद्ध नहीं होता है, जैसे यहाँ पर विद्ध कहा कि उसकी बुद्धि विद्ध हो गई, बुद्धि में आर पार हो गया, क्या जो वेश्या के जो काम बाण हैं या उसके जो नयन बाण हैं दृष्टि का जो बाण है उससे उसकी बुद्धि विद हो गई, विद गई है ना। तो अगर हम भागवत का नित्य सेवन करते हैं तो ये जो काम भाव हैं, रजोगुण के भाव, तमोगुण के भाव, काम भाव, क्रोध भाव, लोभ भाव, ये सब जो भाव हैं ये चित्त हमारा विद्ध नहीं होगा। इसका मतलब कि भाव आएंगे, भाव तो आएंगे लेकिन चित्त उनसे विद्ध नहीं होगा। इसका मतलब चित्त हमारा जो है इतना मजबूत हो जाता है कि वे बाण जो है हमें बेध नहीं पाएंगे। चेत एत अनाविद्धम स्थितम सत्वे प्रसिद्धति, और सत्व गुण में स्थित होकर के वो प्रसन्न हो जाता है। क्योंकि ये जो बाण है अगर चित्त को बेध नहीं पाएंगे तो फिर कष्ट भी नहीं होगा और क्या होगा, स्थम सत्वे प्रसिद्ध, चित्त प्रसन्न हो जाएगा। और जब चित्त को बेध देते हैं तो फिर चित्त बेचैन हो जाता है। तो यहां पर अजामिल की जो स्थिति है वो ये है कि नित्यम भागवत सेवया उसका नहीं हुआ, और भगवान के प्रति उसकी भक्ति में निष्ठा नहीं आई, इसलिए रजोगुण तमोगुण के जो भाव हैं उनसे जो है उसका जो चित्त है या उसकी बुद्धि है वो क्या हो गई, बिंध गई। विशेष रूप से स्त्री की, वो स्वैरणी स्त्री है। स्वैरणी स्त्री का मतलब होता है वेश्या, जो कि अपनी इच्छा के अनुसार किसी पुरुष को विवश करती है सहवास के लिए, तो स्वैरणी कहलाती है। अगर अपने पति से उसकी काम वासना पूरी नहीं होती तो किसी दूसरे पुरुष के पास जाएगी, कि वो स्वैरणी है, अपनी इच्छा के अनुसार अपनी काम वासना की पूर्ति के लिए जाएगी, तो स्वैरणी कहलाती है। तो यहां स्वैरणी की बात बताई है कि एक स्वैरणी स्त्री है और दूसरी स्त्री की बात बताई गई है जो कि विप्रा है, यानी एक ब्राह्मणी है और अप्रौढ़ा है और महान कुल में जो पैदा हुई है एक वो स्त्री है। तो स्त्रियों के भेद है, एक उत्तम कोटि की स्त्री होती है, मध्यम कोटि की स्त्री है और अधम कोटि की स्त्रियां, तीन प्रकार की स्त्रियां हैं, उत्तम, मध्यम, अधम। तो जो पत्नी है अजामिल की, विवाहिता पत्नी है, उत्तम कोटि की स्त्री है। उत्तम कोटि की स्त्री उसमें जो है सब प्रकार के गुण हैं, वो अपने पति की रक्षा करती है, अपने पति से कोई मांग नहीं करती, उसकी अपनी कोई मांग नहीं होती, उसका पति जो है अपने इस पत्नी के साथ सुरक्षित रहता है। अगर उसके अंदर कुछ काम वासना होती है तो पत्नी उसका सहयोग भी देती है, अगर उसके अंदर काम वासना नहीं है, पति के अंदर काम वासना नहीं है, तो पत्नी की अपनी कोई मांग नहीं होती, उत्तम उत्तम कोटि की स्त्री। तो ऐसी भी स्त्रियां हैं जो सत्वगुण में है। तो जो ऐसी स्त्री होती है तो उसके साथ रह करके फिर व्यक्ति को संन्यास लेने की जरूरत नहीं है। तो प्रभुपाद ने अपने कुछ शिष्यों को कहा कि तुम गृहस्थी के रूप में ही सन्यासी हो, तुम सन्यास लेना चाहते हो, पत्नी का त्याग करना चाहते हो, पत्नी अगर सहयोग दे रही है तुम्हारी भक्ति में तो तुम्हें त्याग करने की जरूरत नहीं है। चैतन्य महाप्रभु ने विष्णुप्रिया का त्याग किया था, है ना, तो वो भी उत्तम कोटि की स्त्री थी विष्णुप्रिया पूर्ण रूप से, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने प्रचार के लिए संन्यास लिया था, तो वो एक कारण बन गया, उचित कारण बन गया कि उन्होंने ऐसी स्त्री का त्याग किया, क्योंकि उनको कृष्ण भावनामृत का प्रचार करना था इसके लिए। लेकिन प्रभुपाद ने ऐसा नहीं सोचा था कि उन्हें संन्यास लेकर के ही प्रचार करना है। वो विचार कर रहे थे कि गृहस्थ में रहते हुए वो प्रचार करें और पुस्तकें लिखें, ग्रंथ छापें और भक्तिविनोद ठाकुर की तरह अपने ग्रंथ विदेशों में भेजें और इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत का प्रचार करें, उन्होंने ये सोचा था। लेकिन पत्नी ने कुछ ऐसा कारण बना दिया कि उनको छोड़ना पड़ा। तो उनकी जो पत्नी है वो विप्रा नहीं थी, विप्रा नहीं थी यानी विप्रा माने ब्राह्मणी, ब्राह्मण के लक्षण नहीं थे। वो चाय कॉफी नहीं छोड़ती थी और प्रभुपाद की भागवत उसने रद्दी में बेच दी चाय कॉफी खरीदने के लिए। तो वो एक कारण ऐसा बन गया कि प्रभुपाद को छोड़ना पड़ा और फिर प्रभुपाद ने प्रचार किया तो वो एक ऐसा कारण बन गया। नहीं तो प्रभुपाद गृहस्थ आश्रम में रहते हुए ही सोच रहे थे कि वो प्रचार में लगे रहें, तो वो कारण बन गया कि प्रभुपाद ने छोड़ा। अन्यथा कोई व्यक्ति फिर पत्नी को बंधन ना माने कि पत्नी जो है मेरे लिए बंधन है और मैं जो है संन्यास लूँ तो फिर जो है मुझे मुक्ति प्राप्त होगी। अगर पत्नी साथ में पूरी तरह से सहयोग दे रही है तो वो गृहस्थ सन्यासी भी उसे कहा जाता है, गृहस्थ ब्रह्मचारी भी उसे कहा जाता है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। पत्नी के कारण उसे कोई बाधा ही नहीं है, तो पत्नी के साथ भी वो ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है। पत्नी अपनी ओर से कोई अपना जो है वो मांग करती ही नहीं, अपना कोई आग्रह उसका होता ही नहीं। तो ऐसी स्त्रियां उत्तम कोटि की कहलाती हैं जो हर प्रकार से पति के साथ सहयोग करेंगे। अगर पति कामी है, उसके अंदर बहुत काम वासना है तो उसमें भी सहयोग देगी, और काम वासना नहीं है तो भी उसका सहयोग देगी, अपनी उसकी कोई मांग ही नहीं होती। ऐसी भी स्त्रियां अजामिल की जो पत्नी है वो ऐसी स्त्री है जो कि ना तो वो शिकायत करेगी कि इसके अंदर इतनी काम वासना है ये ऐसा क्यों है, और ना वो शिकायत करेगी इसके अंदर काम वासना नहीं है तो ये ठीक नहीं है। कुछ स्त्रियां जो है अपने पति से शिकायत, पति से उनको शिकायत होती है इस अंदर काम वासना नहीं है, और कुछ पत्नियों को शिकायत होती है किसी ने बहुत काम वासना है। लेकिन जो उत्तम कोटि की स्त्रियां हैं उनको कोई शिकायत नहीं होती, उसके अंदर काम वासना है तो भी सहयोग देंगी, काम वासना बिल्कुल नहीं है तो भी वो सहयोग देंगी, उनका अपना कोई आग्रह नहीं होता। और ऐसी स्त्री का त्याग करना बड़ा दोष है। ऐसी स्त्री का त्याग करना बड़ा दोष है ये मान करके कि ये मेरे लिए बंधन है, ये मेरे लिए एक जो है बाधा है। जब पत्नी कोई बाधा नहीं पैदा कर रही है, कोई बंधन ही नहीं पैदा कर रही है और आपके भक्ति में सहयोग दे रही है तो कैसे आप छोड़ते हैं? या तो कारण बने कि भाई आपको कृष्ण भावनामृत का प्रचार करना है, चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु के पास ये कारण था कि उन्हें कृष्ण भावनामृत का प्रचार करना था, अन्यथा कोई जो है कारण नहीं है कि स्त्री का त्याग किया जाए, है ना। तो यहाँ पर बताया गया है कि अजामिल जो है का बहुत बड़ा दोष लगता है, बहुत बड़ा पाप लगता है। अगर कोई व्यक्ति ऐसे अपनी इच्छा से ऐसी स्त्री को त्यागता है तो उसको बहुत दोष लगता है, बहुत बड़ा दोष है। पहला दोष तो क्या है कि वो विप्रा है, वो ब्राह्मणी है, उसको जो है भक्ति का जो भक्ति के शास्त्र हैं उनमें उसकी रुचि है, अप्रौढ़ा है, अप्रौढ़ा का मतलब अभी उसका शरीर भी विकास अवस्था में है, उसके अभी कुछ संतान भी नहीं हुए कि अपने पुत्रों की सुरक्षा में रहेगी। कुले महाति लंबिताम, महान कुल में उसका जन्म हुआ है, तो वो जो है जो उत्तम कुल में जो पैदा हुई स्त्रियां होती हैं तो उनको बहुत अच्छा प्रशिक्षण प्राप्त होता है कि कैसे पति का सहयोग दिया जाए और हर स्थिति में अपने पति के साथ रहें, कितना भी कष्ट हो वो पति का त्याग नहीं करती। और ऐसे में पति त्याग दे बिना उचित कारण के तो उसको जो है वो बहुत दोष लगता है, बहुत बड़ा दोष लगता है ना। तो जो यमदूत है वो बता रहे हैं विष्णु दूतों को कि इसको नरक में क्यों जाना चाहिए, एक बहुत बड़ा कारण है। नरक में जाने का एक बहुत बड़ा कारण है। स्वर्ण्य स्वर्णी अपांग विदिधि, स्वर्णी जो स्त्री है तो वो जो है अपने पति को विवश करती है, उसकी जब इच्छा होती है उसकी काम वासना की तृप्ति करो तो स्वर्णी है। ये अधम कोटि की स्त्रियां हैं, स्वर्णी पुंसचली, पुंसचली है जो स्त्री होती है वो पति में चाहे जितने गुण हो उसको छोड़ना ही है, क्यों, उसका मन जो है नए नए पुरुषों में लगता है, जितने भी अच्छे गुण हो पति में कोई जो है दोष नहीं है, लेकिन उसका स्वभाव ही होता है छोड़ने का कि वो जो है अपने पति को छोड़ेगी, वो दूसरे पुरुष के पास जाएगी, क्यों, उसको बदलना है, उसको चेंज करना है, उसका स्वभाव है परिवर्तन, परिवर्तन करने का स्वभाव है। पुंसचली जैसे बादल में बिजली चमकती है तो भागवत में वर्षा ऋतु का वर्णन आता है, तो वर्षा ऋतु में जो बादल हैं उनमें बिजली चमकती है, तो ये बताया गया है कि जो बिजली चमकती है बादल में तो बादल की तुलना की गई पुरुष से कि पुरुष में मतलब सब प्रकार के गुण हैं बादल जैसा, और जो बिजली है विद्युत उसकी तुलना की गई है एक पुंसचली स्त्री से कि जो स्त्री है वो ऐसे गुणवान पति को भी छोड़ देती है, यानी बिजली जो है बिजली की तरह चंचल स्वभाव की स्त्रियां होती हैं पुंसचली, वो छोड़ ही देंगी, कोई कारण नहीं है छोड़ने का, ये छोड़ देंगी वो पुंसचली। मध्यम कोटि की स्त्रियां होती हैं तो उनका चित्त दूसरे पुरुषों में जाता है लेकिन समाज का दबाव, समाज का बंधन, उसमें वो जो है बंधी रहती है, इसलिए सुरक्षा हो जाती है उनकी। मध्यम कोटि की जो स्त्रियां होती हैं उनकी सुरक्षा हो जाती है क्योंकि उनका जो है सुरक्षा के लिए उनके पुत्र होते हैं या पति होते हैं या उनके पिता होते हैं, तो उनके संरक्षण में उनकी सुरक्षा हो जाती है, उनका मन जाता है दूसरे पुरुषों में लेकिन जो है वो बंधन है समाज का, इस कारण सुरक्षा हो जाती है। जो अधम अधम कोटि की स्त्रियां होती हैं तो सब प्रकार के बंधन होते हुए भी और बदनामी होते हुए भी वे अपने चरित्र को गंदा करती हैं। तो यहां पर अजामिल का ये बहुत बड़ा दोष है कि वो नरक में जाएगा। यमदूत कह रहे हैं इसको नरक में जाना चाहिए, इसको बहुत बड़ा कारण है कि नरक में जाएगा। लेकिन अब दूसरा विचार किया जाए कि नरक से रक्षा कैसे हुई, उसका एक गुण ये भी है कि यद्यपि अपने माता पिता का त्याग किया, अपनी जो है पतिव्रता और सदा चारणी स्त्री का त्याग किया, लेकिन अभी वेश्या का इसने त्याग नहीं किया, वेश्या का पालन तो अंत में किया क्योंकि वेश्याओं के साथ जो संबंध होते हैं वो हमेशा बदलते रहते हैं और कभी भी स्थायी नहीं होते, जैसे आजकल के विवाह भी होते हैं तो जो लव मैरिज कहा जाता है प्रेम विवाह है, वास्तव में प्रेम नहीं है, वो तो काम है, उसको तो प्रेम का नाम दिया जाता है कि प्रेम लोग जानते नहीं प्रेम होता क्या है, तो प्रेम विवाह कहते हैं, लव मैरिज कहते हैं, कोर्ट मैरिज कहते हैं, तो ये जो है ज़्यादा सफल होती नहीं इस तरह के विवाह, क्योंकि अपनी इंद्रिय तृप्ति के आधार पर लड़का लड़की जो है एक दूसरे को पसंद करते हैं और उसमें जो है कुछ बाधा जरूर आएगी, काम से फिर जो है क्रोध द्वेष ये सब पैदा होंगे, तनाव पैदा होंगे और फिर तलाक होगा। तो हमारे शास्त्रों में ना तो लव मैरिज की अनुमति है और ना तलाक की अनुमति है, हमारे शास्त्रों में इस प्रकार का जो है विधि नहीं है, प्रेम विवाह करने की विधि नहीं है और ना तलाक की विधि है। और वो जो स्त्री है अजामिल की पत्नी है वो इतनी गुणवती है, उसके अंदर इतना गुण है कि अजामिल ने उसका त्याग किया, लेकिन वो फिर भी अपने जो सास ससुर उनकी सेवा में लगी रही और जैसे भी हो उसने कोई शिकायत नहीं की। इसका कारण यह है कि बचपन से बड़ी अच्छी शिक्षा अगर मिलती है किसी व्यक्ति को, तो उसके साथ कुछ अन्याय अगर होता है तो उस अन्याय को वो अपने पिछले कर्म का फल मानता है, और इससे जो है क्या होता है, बहुत बड़ी रक्षा होती है कि व्यक्ति के दिमाग में तनाव नहीं पैदा होता है और पागलपन नहीं आता है, आत्महत्या नहीं करते लोग। तो आजकल लोग क्यों आत्महत्या करते हैं, क्योंकि पिछले जन्म मानते नहीं कि पिछले जन्म में हमारे ही कुछ कर्म थे। अगर आप ऐसे मान लें कि पिछले जन्म में हमारे ही कुछ कर्म थे जिसके कारण ऐसा मेरे साथ हो रहा है, तो कितनी रक्षा हो जाएगी, कितना आपको बल मिलेगा। तो ये सब जो है शिक्षा के कारण है कि अच्छी शिक्षा, आजकल वो शिक्षा है ही नहीं। जितनी शिक्षा है भौतिक शिक्षा, उसने पिछला जन्म मानती नहीं, अगला जन्म मानती नहीं, इसलिए कोई भी अपने साथ अन्याय होता है तो फिर हम क्या सोचते हैं कि मेरे साथ इतना अन्याय क्यों हुआ, मैंने तो कोई गलती की नहीं, मैंने किसी के साथ ऐसा अन्याय नहीं किया और मेरे साथ ये अन्याय क्यों हुआ, है ना। तो कोई किसी की हत्या कर देता है या अपनी आत्महत्या कर देता है गुस्से के कारण, कुछ जो है कदम उठाते हैं, तो इस तरह के जो है बहुत केस हो रहे हैं, केस चल रहे हैं, बहुत केस चल रहे हैं। उस समय सब केस नहीं चलते थे, उसकी पत्नी ने कोई केस नहीं किया। कितने केस चल रहे हैं, लोग हर व्यक्ति छोटी छोटी बात में केस कर देते हैं और जो है वो केस चलते रहते हैं 10 साल 20 साल कितने केस चल रहे हैं अदालत में, कितने केस आते हैं। यहाँ पर कोई केस नहीं आया, उसकी पत्नी ने कोई केस नहीं किया, क्योंकि उसने यही माना कि मेरे पिछले जन्म का ऐसा कुछ रहा दोष है कि मेरे साथ ऐसा हुआ, और अब मुझे कुछ ऐसा करना कि अगले जीवन में मुझे अच्छी गति प्राप्त हो, तो मैं क्यों ऐसा कार्य करूं। तो ये तरीका होता है सोचने का, कि किसी ने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया तो मैं उसके साथ ऐसा दुर्व्यवहार क्यों करूं कि जिससे मेरा भी कर्म बने। तो तरीका होता है सोचने का, इसलिए केस नहीं होते थे। और वो केस जो है दर्ज हो गया कहां, यमलोक में, वो पहले से वहां पर केस बन जाता है। आप केस नहीं करते हैं यमलोक में, यमलोक में केस बन जाता है, और यमदूत जो है बता रहे हैं कि इसका ये केस है और इसको नरक में जाना है। तो जो लोग नहीं मानते इस बात को, तो फिर वो जो है अपना खुद एक्शन लेना चाहते हैं, खुद अपना कदम उठाना चाहते हैं। उसने हमारे परिवार में हत्या की तो मैं भी उसके परिवार में किसी की हत्या करूंगा, उसने हमारे परिवार में एक हत्या की तो उसके परिवार में मैं 2 हत्या करूंगा। तो इस तरह से केस जो है मतलब खुद जो है लोग ले लेते हैं और खुद अदालत भी बन जाते हैं, कोर्ट खुद ही बन जाते हैं, और उस तरह से उनका भी केस जो है बन जाता है, उनका भी लिखा जाता है केस। लेकिन चूंकि वो शिक्षिता है, महान कुल में जो पैदा हुई है, वो स्त्री है, समर्पित है, शिक्षित है, इसलिए उसने कोई केस नहीं किया कि मेरे पति ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया, अब मैं मुझे दूसरा पति चाहिए, मुझे तो अब जाना है। उसने समाज में भी कोई ये बात नहीं उठाई कि मुझे जो है कुछ और चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो है मतलब क्या होती है, शिक्षा के कारण होती है। तो आज के समाज में वो ये शिक्षा है ही नहीं, ये शिक्षा है ही नहीं। हम शरीर हैं, शरीर के साथ पैदा हुए, शरीर के साथ मर जाएंगे, पिछला जन्म नहीं है ना अगला जन्म है, तो फिर ये साथ मेरे साथ क्यों हो रहा है, मैंने किसी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया, मेरे साथ ऐसा क्यों व्यवहार हो रहा है, और इसके कारण हुआ, इसके कारण हुआ। नहीं, जो शिक्षित व्यक्ति होता है वो सोचता है कि हाँ ये कारण तो है, इसके कारण तो है, लेकिन ये कारण ये भी है कि मेरे भी कुछ कर्म हैं। तो वो फिर जो है एक्शन अगर कोई लेता है, कुछ कदम उठाता भी है अपने शत्रु के विरोध में, तो इस तरह से उठाता है कि उसका कोई कर्म ना बने, बुरा कर्म ना बने। अगर मुझे कुछ बदला लेना है किसी शत्रु के साथ में, तो मैं इस तरह से बदला लूँ कि मेरा अपना कुछ कर्म ना बने। तो इस तरह से उस जो है उस सीमा के अंदर वो जो है कुछ प्रतिक्रिया कर सकता है, कुछ कह सकता है, कुछ कर सकता है उतनी सीमा के अंदर कि मेरा अपना कर्म ना बने। तो ये सब जो है शिक्षा के कारण। तो हर व्यक्ति के जीवन में अगर ये शिक्षा हो, और अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ यही शिक्षा दे रहा है कि कृष्ण भावनामृत की शिक्षा इस पर आधारित है। कृष्ण भावनामृत कि शिक्षा इस पर आधारित नहीं है कि भाई हम कृष्ण से प्रेम करेंगे, तुम कृष्ण से प्रेम करो, इस पर आधारित नहीं है। हम शरीर नहीं हैं, शरीर नश्वर है, और हम जीवात्मा के रूप में कभी नष्ट नहीं होते हैं। तो ये जो है ये शिक्षा का आधार है, कृष्ण भावनामृत का आधार है। इस आधार पर आप कृष्ण भावनामृत का जो बनाते हैं अपनी जो है स्थिति बनाते हैं, तो वो मजबूत रहती है, आपकी सुरक्षा रहती है। लेकिन अगर ये शिक्षा नहीं है, मरने के बाद सब खत्म हो जाता है, तो कृष्ण भावनामृत की जो शिक्षा है वो टिकेगी नहीं, ध्वस्त हो जाएगी। जैसे कोई भवन है, खूब मजबूत बना दिया आपने, लेकिन नींव मजबूत नहीं है, तो क्या होगा? ध्वस्त हो जाएंगे। आपने 100 करोड़ रुपए लगा दिया भवन के निर्माण, खूब मजबूत बनाया, और नींव, नींव क्या है? कमजोर। क्या होगा? ध्वस्त हो जाएगा। इसी कृष्ण भावनामृत का जो भवन है, आप कितना भी मजबूत बनाए वो ध्वस्त हो जाएगा, क्योंकि नींव नहीं है। इसलिए नींव को जो है प्रभुपाद ने बड़ा मजबूत बनाया। इसलिए हर श्लोक में जहाँ भी ये बात आती है, तो प्रभुपाद जरूर तात्पर्य देते हैं कि आत्मा जो है नष्ट नहीं होता है, जीव अविनाशी है, शरीर परिवर्तनशील है, हम शरीर नहीं हैं। अपनी पहचान शरीर से हमें नहीं करना चाहिए। तो ये जो बातें हैं ये नींव की हैं, ये शिक्षा। इस शिक्षा के बिना जितनी भी शिक्षा है वो सब क्या है? बेकार है, कोई अर्थ नहीं है इसका। जितने भी कॉलेज हैं, विश्वविद्यालय हैं, कोई शिक्षा ही नहीं है। तो आज के श्लोक में जो हमें चर्चा करनी थी वो यही चर्चा करनी है कि एक स्त्री जो है स्वर्णी है, और दूसरे प्रकार की जो स्त्री है वो उत्तम कोटि की है, और अजामिल ने उत्तम स्त्री का त्याग कर दिया। एक तो बहुत बड़ा दोष ये है, और स्वर्णी के चक्कर में आ गया है ना, उसके जो बुद्धि है वो विद्ध हो गई उसके नयन बाण से, तो वो काम बाण से उसकी बुद्धि जो विद्ध हो गई है, इसका जो है कारण क्या है कि वो भक्ति में उसकी निष्ठा नहीं आई, निष्ठा के धरातल पर वो नहीं आया। निष्ठा के धरातल पर भजन क्रिया होती है, तो भजन क्रिया में हम बहुत संघर्ष करते हैं। आदो श्रद्धा, पहले श्रद्धा होती है भक्ति के प्रति, श्रद्धा होती है, फिर साधु संग होता है, फिर भजन क्रिया होती है, भजन क्रिया से फिर निष्ठा का धरातल आता है। तो निष्ठा के धरातल पर हम अगर आ जाएं तो बहुत सुरक्षा होती है, क्योंकि वो भाव आएंगे हमारे अंदर, आकर्षण होगा स्त्री पुरुष का, लेकिन चित्त जो है उससे विद्ध नहीं होगा, तो चित्त प्रसन्न रहेगा। और चित्त विद्ध हो जाता है तो फिर चित्त अशांत होता है ना, दुखी होता है। तो इस श्लोक का जो हिंदी पद्यानुवाद है वो विष्णु प्रिया ने जो लिखा है वो मैं पढ़ के सुनाता हूँ। स्वच्छंद चारणी कुलटा की तिरछी चितवन ने चित्त हरा, कुलीन और नवयुवा विवाहित पत्नी तक का त्याग किया। पाप की भी देख लो कहीं भला कोई सीमा है, मन के पीछे जो लगे परिणाम यही तो होता है। तो आज के श्लोक में हमने कुछ चर्चा की है, अब आप लोगों की ओर से कोई चर्चा है या कोई प्रश्न है, या मैं प्रश्न करूं? माता जी बोलिए। सब कर्म जो है बनता है, केस बनता है, इसी बात को समझाया जाए। अगर आप अच्छी प्रकार से समझेंगे, इनका माता जी का प्रश्न नहीं सुना ना, माता जी का प्रश्न ये है कि मध्यम स्त्री और उत्तम स्त्री है तो वो तो सुरक्षित रहती है, उनके चरित्र सुरक्षित रहते हैं, और स्त्रियों के लिए बताया गया है, तो क्या पुरुषों को पुरुषों का फिर क्या कर्तव्य है? तो वही मैं बता रहा हूँ कि पुरुषों का भी जो कर्तव्य है, अगर वो कर्तव्य नहीं करते हैं तो उनका केस चलता तो है, उनका केस चल रहा है। अभी जामिल को नरक में जाना पड़ रहा है, तो आपने अगर सुना नहीं ध्यान से तो फिर आप प्रश्न करेंगे। अगर आपने ध्यान से सुना है तो ये केस चल रहा है। जो स्त्री है, अगर वो केस नहीं कर रही, कोई कोर्ट केस नहीं कर रही, कोर्ट में नहीं जा रही कोई स्त्री है ना, तो उसको पता है कि एक कोर्ट पहले से बना हुआ है, उसमें वो केस ना करे तो भी केस चल रहा है। मेरी बात समझी माता जी? तो ये जो है, मतलब सबका एक कर्म बन रहा है, सबका कर्म बन रहा है। और जो स्त्री होती है वो अपनी तरफ से प्रयास करती है अपने पति को सुधारने का, जैसे मंदोदरी है, वो भी सती स्त्री है, उसको सती कहा गया है। रावण की पत्नी सती है, तो वो हमेशा राम के पक्ष में रावण को समझाती रहती थी। अपना उसने पूरा प्रयास किया, कार्य किया, रावण नहीं माना तो उसका दोष नहीं लगा, स्त्री का दोष नहीं लगा ना, तो उसको तो अच्छी गति प्राप्त होगी। तो रावण के साथ वो सती नहीं हुई, लेकिन तो भी मंदोदरी को सती कहा जाता। तारा बाली के साथ सती नहीं हुई, बाली की मृत्यु के बाद तारा सती नहीं हुई, लेकिन तो भी सती कहा जाता है। तारा ने समझाया था बाली को, तो राम के पक्ष में ही बताया। तो जो स्त्रियां हैं तो वो सती होती हैं। तो ये मत समझिए कि इस जीवन में ही जो है, मतलब किसी ने अगर अन्याय किया है तो वो जो है आपके साथ कुछ अन्याय हुआ है। आपको क्या समझना है, पिछले जन्म का अपना कुछ दोष है। कोई भी कष्ट अगर आपको मिल रहा है तो पिछले जन्म के अनुसार मिल रहा है, ठीक है ना। तो ये मत समझिए कि मुझे कष्ट जो मिल रहा है केवल इनके ही कारण मिल रहा है, कि ये मुझे मेरे साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं तो मुझे कष्ट मिल रहा है, केवल यही कारण है, केवल ये कारण नहीं है। हम किसी व्यक्ति को कारण बना लेते हैं, पति जो है अपनी पत्नी को कारण बना लेते हैं, पत्नी मुझे कष्ट दे रही है, या पत्नी है पति को कारण बनाती है, पति मुझे कष्ट दे रहा है। लेकिन एक दूसरा भी कारण है, और वो क्या कारण है? अपने कर्म, अपने कर्म। तो वो शिक्षा अगर मिले तब तो आप समझेंगे और आपको बल मिलेगा कि हाँ मेरे भी कुछ कर्म है, अब मुझे क्या करना चाहिए। तो मंदोदरी जैसे सोच रहे मुझे क्या करना चाहिए, तो जितना अपनी शक्ति थी उसने रावण को समझाया, और क्या कर सकती है, तो उसका अच्छा कर्म बनो। वो तो नहीं त्याग सकती ना, पति का त्याग नहीं कर सकती। पति का त्याग यही इसी प्रकार से पति का त्याग होता है कि वो उसके पाप कर्म में वो सहयोग नहीं देगी। स्त्री को अपने पति का त्याग कर देना चाहिए अगर पति पाप कर्म में लगा हुआ है, लेकिन त्याग वो ऐसे नहीं कर सकती घर छोड़ के चली जाए। अपने पति के साथ जो है वो पाप में सहयोग नहीं देगी तो वही उसका जो है त्याग है, ठीक है ना। और कोई प्रश्न किसी का? अभी हमारे पास समय है, आपका प्रश्न? हाँ जी, फिर से बोलिए। क्या वही कारण है कि अगर हम नित्यम भागवत सेविया करते हैं तो प्रभुपाद ने बहुत बड़ी जो है सुरक्षा दी है कि उनके जितने मंदिर हैं रोज भागवत का जो है प्रवचन होता है। नित्यम भागवत सेव्या, इसमें होता क्या है, नष्ट प्रायश अभद्रेशु, पहले तो अभद्र नष्ट होंगे, ये बहुत लंबी विधि है, आपके अनर्थ हैं, आपके अंदर जो अनर्थ हैं वो बहुत भरे हुए हैं, और वो अनर्थ अगर आपके नष्ट हो रहे हैं तो एक साल में अगर मान लो 1% भी अनर्थ दूर हुए तो ये आप समझिए कि बड़ी बात है, कि कितने जन्मों की बीमारी, आप समझे। तो ये हमें नित्यम भागवत सेवा, इसमें बहुत धैर्य की आवश्यकता है, अनर्थ निवृत्ति, साधु संग, भजन क्रिया, भजन क्रिया से अनर्थ निवृत्ति, अनर्थ दूर होंगे, है ना। तो अभी आप देखिए कि अनर्थ जो है आपका जो आकर्षण है माया के प्रति, तो पहले जितना था तो अभी उसमें 1% कम हुआ, 2% कम हुआ, तो वो एक उपलब्धि है। अनर्थ निवृत्ति के बाद निष्ठा आएगी, तो निष्ठा में 75% अनर्थ दूर होते हैं, वो भी 25% रहते हैं, प्रायः अनर्थ नष्ट होते हैं, ऑलमोस्ट निष्ठा में भी जो है अनर्थ रहते हैं, लेकिन 75% दूर हो गए, 25% फिर भी अनर्थ रहते हैं। और निष्ठा के आगे भी क्या होता है, निष्ठा के बाद रुचि, है ना, रुचि होता है, निष्ठा के बाद रुचि, फिर आसक्ति, फिर भाव, फिर प्रेम, तो प्रेम के धरातल पर ही अनर्थ है पूरी तरह से नष्ट होते हैं, वहां सुरक्षित है। और दूसरी बात ये भी समझना है कि जो स्त्री के प्रति जो आकर्षण है, आसक्ति है, उससे जो मोह और बंधन होता है, वैसा मोह बंधन और दूसरे आसक्ति में नहीं होता है। जैसे भरत महाराज थे तो हरिण के प्रति वो जो है आसक्त थे, अपने पुत्र भाव में, है ना, तो गिर तो गए वो, लेकिन उनको हरिण का शरीर प्राप्त हुआ तो पूर्व जन्म की चेतना बनी रही कि मैं कौन था, मैं कैसे हरिण का शरीर मिल गया, तो हरिण के शरीर में भी पूर्व जन्म की चेतना बनी रही, तो वो इस प्रकार का जो है मोह और बंधन नहीं था। स्त्री के प्रति या पुरुष का, स्त्री के प्रति स्त्री का, पुरुष के प्रति ये जो मोह है, बंधन है, हाँ, भगवान कपिल कहते हैं ना तथा से भवेन मोहो बंधश्चान्य प्रसंगतः, अन्य आसक्तियों के द्वारा इतना मोह और बंधन नहीं होता है, यो सित संगात यथा पुंसो यथा तत्संगी संगतः। स्त्री की आसक्ति में या स्त्रियों की आसक्त लोगों की आसक्ति में जो मोह और बंधन होता है, वैसा मोह बंधन दूसरे प्रकार का नहीं होता। तो भरत महाराज हरण के प्रति जो है आसक्त थे पुत्र भाव, लेकिन बहुत जल्दी तो वो एक प्रकार से गिरना नहीं था, वो एक प्रकार से गिरना नहीं था, वो अपनी चेतना में आ गए, मैंने क्या गलती की हरण के शरीर में। लेकिन जो स्त्री आसक्त होते हैं वो कितनी मतलब दूषित चेतना होती है, उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता, वो बिल्कुल एक प्रकार से विस्मृत हो जाते हैं। ठीक है, आपका एक से पहले अभी ये बोल, हाँ आप बोलिए, आप बोलिए। माता जी बात आना कर रहे हैं, हाँ जी, दो कारण, हाँ आवाज साफ नहीं आ रही, ये माइक में कुछ गूंज रहा है या फिर मुझे सुना नहीं पड़ रहा, बिना माइक के बोलिए। पास एक्सप्लोइट, हाँ हाँ हाँ, स्त्री को किस हद तक देखना चाहिए कि मेरे कर्म, अब जैसे ये है स्त्री तो कितनी हद है, उसने त्याग दिया, उसके पति ने त्याग दिया, और भगवान है रक्षा करने वाले, द्रौपदी ने फिर भगवान को याद किया और भगवान ने रक्षा की, तो ऐसी बात नहीं है कि रक्षा करने के लिए भगवान नहीं है, यही कृष्ण भावनामृत संघ है, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ ये है कि हमेशा कृष्ण को याद करो, है ना। तो ये कहा गया है कि अगर आप जो है भगवान का स्मरण करते हैं हमेशा, कि संकट ना आए, तो संकट में भगवान रक्षा करेंगे, है ना। लेकिन होता क्या है कि सुख में तो हम भगवान को भूल जाते हैं, फिर जब दुख में स्मरण करते हैं तो भगवान भी भूल जाते हैं। है? अगर हम सुख में भी स्मरण करें, हमेशा हमेशा सुख में स्मरण करें, तो दुख में भी जो है भगवान का याद आएगी, उसमें फिर बहुत बल मिलेगा। कुंती महारानी कहते हैं हमें विपत्तियां दीजिए, हमें विपत्तियों में ही आपका स्मरण होता है ना। तो अगर जो है ऐसी विपत्तियां हैं जिनमें भगवान का स्मरण होता है, तो वो अपनी बहुत बड़ी संपत्ति है, वो बहुत बड़ी संपत्ति है। उससे हम कुछ गलत रास्ते में भी नहीं चलते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं। तो जो दुख सुख दुख हर समय अगर हमारी चेतना ऐसी रहती है कि ये संसार दुखों का स्थान है और इसमें जितना भी दुख मिले वो कम ही है, ये तो दुखों का स्थान है ना, तो व्यक्ति को बहुत बल मिलता है। और अगर हमेशा स्मरण करेंगे तो ऐसी बात नहीं है, आपके जीवन में कितनी भगवान ने रक्षाएं की हैं, भगवान ने कितनी कृपा की है, तो आपको अनुभव होगा। एक किताब आप लिख सकते हैं अपने जीवन में कि आपने आपकी भगवान ने कितनी रक्षा की है। लेकिन कृतज्ञ है, हम लोग कृतज्ञ हैं, सब भूल जाते हैं, केवल वो याद करते हैं कि मेरे साथ कितना अन्याय हुआ, लेकिन भगवान ने कितनी हमारे साथ जो है कृपा की है, कितनी सुरक्षा की है, उसको हम कभी सोचते नहीं। ये बात है। अच्छा, कौन प्रश्न कर रहे थे बीच में? हाथ उठाइए। हाँ जी, इनको माइक दीजिए पीछे। हमारा उधर क्यों नहीं हो रहा? इसका उत्तर दिया ना मैंने। मैं अभी इस पर विचार नहीं कर रहा हूँ, अभी तो ये जो सिद्धांत है वो यही है कि आप नित्य भागवत का अगर सेवन करते हैं तो आपके अनर्थ धीरे धीरे दूर होंगे। तो जो मैंने उत्तर दिया वो पर्याप्त है ना, ये पर्याप्त है कि आप जो है अगर नित्य भागवत का सेवन करते हैं तो आपके अनर्थ धीरे धीरे दूर होंगे, है ना। तो इसमें जो है देर लगती है, रजोगुण तमोगुण है, और सत्वगुण में आने के लिए आपको जो है रजोगुण तमोगुण से ऊपर उठना है, है ना। इस्थम सत्वे प्रसिद्धति, सत्वगुण में चित्त स्थित होता है तो प्रसन्न हो जाता है। तो रजोगुण तमोगुण से ऊपर उठने की जो प्रक्रिया है बहुत लंबी है, और ये कई जन्मों का अगर रोग है, कई जन्मों का रोग है, हैं, तो ये अगर इसमें हमें कई जन्म लग जाए इसकी चिकित्सा में भी, तो कुछ इसमें कम नहीं है। ये मैं सोचे इसी जीवन में ही हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगा। अगर कई जन्म भी लगें तो भी आपको प्रार्थना करनी चाहिए कि मैं इसी दिशा में बना रहूं, ठीक है ना। जैसे नौका मिली है आपको, तो आप नौका में हैं तो आप सुरक्षित हैं, अगर पार नहीं कर पा रहे हैं और धीरे धीरे नौका अगर आगे बढ़ रही है किनारे की तरफ और कई दिन लग रहे हैं, तो भी आपको शिकायत नहीं करना चाहिए कि एक ही दिन में मैं पार हो जाऊँ। लेकिन आप नौका में हैं तो कितने सुरक्षित हैं, है ना। तो एक अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना में संघ है, ये प्रभुपाद ने जो बनाए, संघ में अगर आप रहते हैं तो आप कितने सुरक्षित हैं। यद्यपि आप किनारे पर नहीं पहुंचे हैं, लेकिन समुद्र के बीच में भी नौका में बैठे हुए हैं तो कितने सुरक्षित हैं। यहां जो समझने वाली बात है वो ये है कि अगर आप जो है उतावलीपन से जो है अगर आप नौका से कूद जाएं तो कितने संकट में पड़ जाएंगे। तो उतावला होने से कोई फायदा नहीं है कि आप भाग दौड़ा, हाँ दौड़ोगे नौका में दौड़ोगे तो और खतरा है, तो आपको दौड़ना नहीं है। आप भक्तों के बीच में रहिए, भक्तों के साथ जो है अगर कुछ मतभेद भी होते हैं, कुछ दिक्कतें भी होती है, तो उसको सहन करो और आप नौका में रहो। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ एक नौका है, एक जहाज है समुद्र में, और आप बहुत सुरक्षित हैं इस नौका में। और हम यही भी प्रार्थना करके जन्म जन्म हम इसी नौका में रहें, जन्म जन्म प्रभु से ही। अगर हम इस जीवन काल में नहीं पहुंच पाए किनारे में, तो कई जन्मों तक में भी हम सुरक्षित हैं इसमें। तो यहां पर हमको समझना यही है कि आप भक्ति में जहां भी हैं, जिस धरातल पर हैं, तो आप उसमें मतलब बने रहिए और गिरे नहीं। गिरना हाँ बहुत खतरा, खतरनाक है, गिरने बहुत खतरा, लेकिन आप किसी प्रकार से नौका में बैठे रहिए तो जो है आप सुरक्षित हैं। तो यहां पर जो सिद्धांत है वो यही है ना, कि साधु संग सर्व शास्त्र कोए, साधु संग, तो साधु संग की नौका प्रभुपाद ने दी है। तो जितने भी मंदिर प्रभुपाद ने दिए हैं, सब मंदिरों में जो है भागवत का जो है प्रवचन होता है, तो आप अगर इसका लाभ उठाते हैं तो आप जो है बहुत सुरक्षित हैं, अनर्थ आपके दूर नहीं हो रहे हैं, तो अभी आप बहुत सुरक्षित हैं। और दूर होंगे अगर आप जो है इसमें लगे रहते हैं नित्यम, तो नित्यम का मतलब है कि लगातार आपको श्रवण करना है, लगातार सुनना है ना। रुचि तो बहुत बाद में आएगी, रुचि तो आगे बहुत बाद में आएगी, अभी तो अनर्थ दूर होंगे तब कहीं निष्ठा में आएंगे, निष्ठा के बाद कहीं रुचि आएगी। आपकी रुचि भी नहीं है, आपको कड़वा लगता है, ये हरिनाम भी कड़वा लगता है, ये भागवत कथा रोज सुनना भी कड़वा लगता है, आप क्या सोचते हैं कि मैं नीचे बैठा हूँ, ये व्यक्ति ऊपर बैठ करके मुझे प्रवचन दे, ये क्या तरीका है? आप तो बड़े सम्मानित हैं, आपका सम्मान भी जो है खत्म हो रहा है, आप यहाँ नीचे बैठे हैं तो बुरा लगता है कि रोज रोज जो है मैं सुनूं, मेरा इससे क्या सम्मान बढ़ रहा है, मेरा तो अपमान हो रहा है तो अगर आप जो है इसमें लगे रहते हैं तो फिर आगे चल करके ये क्या है, प्रारंभ में विष की तरह है, परिणाम अमृत की तरह। यह तदगे विषम है, परिणाम में अमृतोपमम, प्रारंभ में जो विष की तरह है, परिणाम में वो अमृत की तरह होता है। तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादम, तो सात्विक सुख है। तो श्रीमद् भागवत का जो प्रवचन है, ये शुरू में हो सकता है कि आपकी रुचि ना हो और वो कड़वा लगे। जो पीलिया का मरीज होता है तो उसको मिश्री कड़वी लगती है, तो मिश्री कड़वी थोड़ी है, मिश्री तो मीठी है, लेकिन उसको पित्त का रोग है, उसकी पित्त के कारण जो है उसकी जिह्वा तप जाती है, पित्तो पित्त रसनस नरोच, इसलिए रुचि नहीं होती है। किंतु आदरा अनुदिनम खलु सैवे जुष्टा, परंतु आदर पूर्वक अगर उसी मिस्त्री को वो लेता रहता है, कड़वी लग रही है उसको, तो दवाई के रूप में लेता है, आदर पूर्वक लेता है, तो आदर पूर्वक आप जो है कृष्ण का नाम और कृष्ण का चरित्र अगर आप लेते रहते हैं, आदर पूर्वक लेते रहते हैं, कड़वा लग रहा है, अविद्या की बीमारी है। सियात कृष्ण नाम चरित आदि सिताप विद्या पित्तो पितप से रस न रोचिका, अविद्या रूपी पित्त की बीमारी है, इसलिए कृष्ण का नाम और कृष्ण की कथा वो आपको जो है उसमें रुचि नहीं हो रही है। लेकिन ये जो है इलाज है, आप हॉस्पिटल में अगर भर्ती हुए हैं तो आप ये नहीं कहेंगे कि मुझे जो है अपने हिसाब से इलाज कराना है, जो अच्छा लगेगा तो मैं करूँगा, जो अच्छा नहीं लगेगा मैं नहीं करूँगा, तो ये तरीका नहीं है। अस्पताल में आप भर्ती हुए हैं तो प्रभुपाद ने भी अस्पताल बनाए हैं, आप यहाँ अगर भर्ती हुए हैं फुल टाइम है, तो फिर ये नहीं होता है कि आपको जो अच्छा लगे तो करेंगे, जो अच्छा नहीं लगे तो नहीं करेंगे, ये नहीं है। तो उस इलाज की जो विधि है वो जो है चैतन्य महाप्रभु ने दी है और प्रभुपाद ने दी है, तो उसमें कोई कमी नहीं है। आपको अच्छा नहीं लगता है तो आपकी कमी है, आप उसको स्वीकार करिए और जब शुद्धि होगी तो फिर आपको वही अच्छी लगेगी, आप छोड़ेंगे नहीं उसको। निवृत्त तरसे रुपये की ये मानात, जब तृष्णा मिट जाती है तो फिर यही जो है बीमारी ठीक हो जाती, तो मधुर लगने लगती, फिर आप छोड़ेंगे नहीं इसको, ठीक है ना। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।